ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारत और जमैका ने आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रयू होलनेस के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि डॉ होलनेस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं और भारत उनकी यात्रा को विशेष महत्व देता है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। जमैका के प्रधानमंत्री ने कहा कि जमैका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 7 जिलों की सभी 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। जम्मू, कठुआ और सांबा तथा कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में मतदान हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा के 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक से वायु वीर विजेता कार रैली को रवाना किया। ये रैली 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कुल 7,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी। रक्षा मंत्री ने युवाओं से सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनकर सम्मान, गौरव और राष्ट्रभक्ति का जीवन अपनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है और भारत अब दुनिया के रक्षा निर्यातकों में गिना जाता है। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 277वें वार्षिक दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने कामकाज में नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए विभाग की सराहना भी की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2024 के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पाटिल ने पिछले 10 वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वो राज्य सरकार से सोना तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगेंगे। तस्कर इस अवैध कमाई का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में मल्लापुरम जिले से हवाला धन और सोने की बरामदगी को राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़ा था। श्री खान ने पलाकड़ में कहा कि यह गंभीर मामला है और मुख्यमंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुट ने आज ब्रसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार संभाल लिया है। श्री मार्क रुट ने सहयोगी देशों से नई चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा बजट बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने नाटो देशों से हिंद प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने का भी आग्रह किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 33 अंक की गिरावट के साथ 84,286 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13 अंक के नुकसान के साथ 25,796 पर रहा। भारत ने कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला था। मेजबान टीम ने यह लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज नई दिल्ली आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम से अंतर्गत पौधा लगाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।